તારીખ 24/9/1998 શ્રી મદરાજચંદ્ર પત્રાંક 569 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 721
મદરાજચંદ્ર વચનામૃત પત્રાંક પત્ર 569 પત્ર કા હેડિંગ લિખા હૈ श्री सत्पुरुषों को नमस्कार। सत्पुरुष माने ज्ञानी पुरुष को यहाँ नमस्कार किए हैं। नमस्कार करने का कारण यही है कि जो ज्ञानी होते हैं वो अपना तो आत्मकल्याण करते ही हैं, साथ साथ दूसरों को आत्मकल्याण करने में निमित्त होते हैं। और उनकी निर्दोषता को, उनकी पवित्रता को देख करके नमस्कार किया गया है। पत्र लिखा है सौभाग्य भाई को। सौभाग्य भाई मैंने इनके बहुत समीप के, नज़दीक के पात्र थे, जो इनसे करीब 44 साल उम्र में बड़े थे। 44 साल वो बड़े थे, मतलब दो पीढ़ी का अंतर हो गया, 2 generation पास। और उनके परम भक्त थे और आपस में काफ़ी स्नेह था, प्रेम था। और श्रीमद जी को बहुत पूज्य भाव से वो देखते थे। एक सिद्धांत लिखा है पत्र के प्रारंभ में कि सर्व क्लेश से और सर्व दुख से मुक्त होने का उपाय एक आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान माने अपना आत्मस्वरूप में जो सुख शांति है, जो आनंद है, उसका अनुभव, उस अनुभव को कहते हैं या आत्मज्ञान। कहने का तात्पर्य वो है कि जिस जीव को अपने आत्मा में जो पावर रूप से है, किस परिस्थिति में, किस पोजीशन में है, पावर रूप में है, आनंद है, शांति है, सुख है, वो आत्मा में पावर के रूप में है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पावर के रूप में है, इसका यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं, तो ये लट्टू जला सकते हैं, ये पंखा जल कर सकते हैं, फ्रीज में ले सकते हैं, गीजर में ले सकते हैं, एयर कंडीशन में ले सकते हैं, विभिन्न प्रकार का पावर पावर होता है। वो वैसे गर्म दिखने में आता है, फिर भी ठंडे में भी वही पावर काम में आता है, फ्रीज में भी वही काम में आता है, एयर कंडीशन में वही काम में आता है। वैसे आत्मा में जो सुख शांति आनंद है वो पावर के रूप में है। अगर उसकी सही अवस्था होती है, राइट पोजीशन, तो सुख शांति और आनंद के रूप में अनुभव होता है। और उसकी विपरीत, उल्टी अवस्था होती है तो दुख, अशांति, क्लेश, ऐसे अनुभव होता है। जैन धर्म है वो अंधश्रद्धा का विषय नहीं है, ब्लाइंड फेथ का वो रिलीजन नहीं है, एब्सोल्यूट साइंस है। आत्मा एक पदार्थ है, सब्सटेंस है, इसमें पावर के रूप में इसकी प्रॉपर्टीज हैं, उसके बहुत से कैरेक्टर्स हैं और साइंटिफिकली उनकी अवस्थाएं होती है, अच्छी बुरी जो भी होती है, सुख दुख रूप जो भी होती है, ज्ञान अज्ञान रूप जो भी होती है, वो इसका एक विज्ञान है। वो विज्ञान हमारे आचार्यों ने इस ग्रंथ में भरा हुआ है। तीर्थंकर देव थे, वो सर्वज्ञ थे, सर्वज्ञानी थे, तो उनकी वाणी में, दिव्य ध्वनि में, जिनवाणी में तो दुनिया भर का विज्ञान आया है। सबसे पहले जर्मन लोग यहाँ से हमारे शास्त्र ले गए और हिटलर ने एटम बम बनाया उस पर से। इसके बाद ब्रिटिश का राज्य हुआ, ब्रिटिशर लोग भी काफ़ी ले गए हैं। इस वक्त हम गए अब्रॉड में, तो हमने लंदन की और कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड सभी लाइब्रेरियों में अपने ग्रंथ देखे, बहुत से ग्रंथ ले गए हैं, सैकड़ों की तादाद में ले गए हैं, 2-5-25 नहीं ले गए, सैकड़ों की तादाद में ले गए। और जर्मनी की तो बहुत सी लाइब्रेरी में हमारे ग्रंथ पड़े हैं, बर्लिन में है, ट्यूबिंगजन में है, गोटिंगजन में है, मार्बर्ग में है, स्ट्रेसबर्ग में है, फ्रांस में है, पेरिस में है, हैम्बर्ग में है, बहुत से 10-12 लाइब्रेरी में है, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है। वो लोग उस पर रिसर्च करते हैं, जबकि वो लोग भौतिक विज्ञान पर रिसर्च करते हैं। भौतिक शास्त्र भी बहुत हैं हमारे और आध्यात्मिक शास्त्र भी बहुत हैं। आध्यात्मिक शास्त्र में भौतिक विज्ञान से थोड़ा अलग का सब्जेक्ट है, टॉपिक अलग का है। इसके लिए इस विषय के जो तज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, वो इस बात को बता सकते हैं। तो उन लोगों के पास आध्यात्मिक विज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक विषय नहीं है, भौतिक विज्ञान पर उन लोगों ने काफ़ी तरक्की की। फिर भी वो लोग दुख से मुक्त नहीं हुए, भौतिक विज्ञान में तरक्की की, बहुत से भौतिक साधन प्रसाधन अनुकूलता के खोजे, प्राप्त किए, अनुकूलताएं बहुत मिली, पैसे भी मिले, लेकिन सुखी नहीं हुए, बहुत टेंशन में हैं। उतने टेंशन में हैं कि वहाँ 10-12 साल की जो औरतें होती है, स्त्री होती है, वो भी सिगरेट पीने लग जाती है। अगर सिगरेट नहीं पिए तो उनको चैन नहीं रहता। वहाँ तो वार्निंग बहुत खराब लिखी है कि इससे कैंसर होता है, वो होता है, वो होता है। यहाँ तो उतना ही लिखते हैं कि इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन वहाँ तो खुला डिजीज का नाम दिया है वार्निंग में कि इतने इतने बड़े रोग होते हैं। फिर भी बहुत पैमाने में 95% से ज़्यादा लोग स्मोकिंग करते हैं, दारू पीते हैं, जो टॉक्सिकेशन के कारण है। टॉक्सिकेशन में इसलिए जाते हैं कि दिमाग फिर वहीं चढ़ जाता है और दूसरी चिंता से मुक्त होने का एक तरीका वो आजमाइश करते हैं जो रेगुलर नहीं है और नैसर्गिक नहीं है, आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है, इन नेचुरल है। यहाँ ज्ञानी कहते हैं, अपना अनुभव करके, सुख शांति का, आनंद का अनुभव करके कहते हैं कि सभी प्रकार का दुख और सभी प्रकार का क्लेश, दुख और क्लेश बहुत से प्रकार के हैं। भय का दुख होता है, पीड़ा का दुख होता है, टेंशन का दुख होता है, अनेक प्रकार के रोगों का दुख होता है। सबसे ज्यादा होता है वो टेंशन का होता है। रोग का इलाज अधिकांश संशोधित हुए हैं, लेकिन टेंशन के विषय में अभी मानव जात सक्सेस नहीं हुई है। इसका कारण वो है कि वो मेंटल डिजीज है। मेंटल डिजीज शारीरिक रोग से भयंकर होता है, अधिक खराब होता है, और इसके लिए आध्यात्मिक विज्ञान सबसे बढ़िया से बढ़िया चीज है। तो अनुभव करके कहते हैं कि सभी प्रकार का दुख या टेंशन या कुछ भी हो, हर हालात में अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस आपको दुख नहीं हो और सुखी हो, इसका कोई एक उपाय है तो वो आत्मज्ञान है। ये श्रीमद जी हमारे गांधी जी के गुरु थे। गांधी जी हमारे देश में हमारे नेशन के एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट पर्सन हुआ। तो उस जमाने में बारेट लो लंदन होकर के बम्बई में प्रैक्टिस करते थे। उस जमाने में जब लोग पढ़े लिखे नहीं थे हमारे देश में, उस जमाने में वो लंदन जा करके बैरिस्टर होके आए थे। फिर भी जब ये अपने जीवन में उलझन में आते थे, टेंशन में आते थे, तब उन्होंने श्रीमद जी के संपर्क में आते थे। उनकी बहुत सी चिट्ठियाँ भी हैं इस ग्रंथ में कि क्या क्या प्रश्न पूछे थे, क्या क्या उन्होंने उत्तर दिए, समाधान कराए। ये आत्मज्ञानी पुरुष थे और सुखी हुए थे, तो अपने अनुभव से और हमारे आचार्यों के अनुभव से मेल खाते हुए उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, एस्टैब्लिश किया है इस प्रिंसिपल को कि सभी प्रकार के दुख और सभी प्रकार के दुख से अगर मुक्त होना हो किसी को तो उसको आत्मज्ञान करना चाहिए। आत्मज्ञान है वही आत्मशांति को और आत्मा के सुख को आनंद को पैदा करता है, इसलिए उसी को दूसरी भाषा में आत्मकल्याण कहते हैं। कल्याण मैंने क्या चीज कि दुख से मुक्त होना, दूसरी कोई बात नहीं है उसमें। कोई बाहर में अनुकूलताएं हो जाए वो बात इधर नहीं है कि सभी प्रकार की अनुकूलता हो जाए। सभी प्रकार की अनुकूलता वाले बहुत से मल्टी मिलियनर्स भी बेचैन हैं और टेंशन फ्री नहीं हो रहे हैं, वो बात आज के दुनिया में प्रूव्ड हो गई है, ऑलरेडी प्रूव्ड है वो। तो आत्मज्ञान है वही आत्मशांति और आत्मकल्याण है। और अगर आत्मज्ञान से सभी प्रकार से दुख से मुक्त हुआ जा सकता है तो उसकी कीमत कितनी बताइए? दुनिया में तो इसकी बराबरी में कोई चीज है ही नहीं, और हो तो बता दीजिए इसकी बराबरी में कौन सी चीज है कि जो सभी प्रकार के दुख से मुक्त करा दें, छोड़ा दें, और भी हर हालत में। जैसे ज्ञानी को रोग भी आता है, शरीर की पीड़ा होती है, फिर भी वो दुखी नहीं होते। ज्ञानी को निर्धनता भी आ सकती है, फिर भी वो दुखी नहीं होते। ज्ञानी के दुश्मन भी हो सकते हैं और वो प्रतिकूलता उनको देते हैं तो भी उस हालत में भी दुखी नहीं होते। उसकी कोई प्रशंसा करते तो वो सुखी नहीं होते, उसको कोई निंदा करते तो वो दुखी नहीं होते, उसको कोई मारते तो भी दुखी नहीं होते, और उसकी कोई सेवा करते तो वो सुखी नहीं होते। इनका सुख दुख का हिसाब कोई दूसरा हो गया, और वही आत्मज्ञान के कारण से ऐसा होता है। इसलिए ये सबसे सारे विश्व में सबसे अधिक मूल्यवान चीज है जिसको आत्मज्ञान, आत्मशांति और आत्मकल्याण बोला जाता है। और हम अन्य धर्म से आए हैं, वेदांत आदि बहुत फिलोसॉफिकल रिलीजन है, उसको देख करके हम गारंटी से कह सकते हैं कि जैन शास्त्र में इसका जो साइंस है, इसका जो विज्ञान है, वो विश्व में किसी भी ग्रंथ में, किसी भी साइंस में, किसी भी रिलीजन में, किसी भी संप्रदाय में नहीं है, वो गारंटी से हम कह सकते हैं? कह सकते हैं नहीं। कोई अगर इस बात पर मुकाबला करना चाहते हैं तो मुकाबला कर सकते हैं कि जैन धर्म इस विषय में सर्वोत्कृष्ट है, हालांकि दुनिया इससे अनजान है। ये एक बहुत बड़ी दुनिया की ट्रेजेडी है, विश्व को, सृष्टि को ये सुख शांति का गुप्त चमत्कार लक्ष्य पर नहीं आया, ध्यान पर नहीं आया है। ये एक दुनिया की बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, लेकिन ये अनुभव से ये बात सिद्ध करके ज्ञानी ने ये बात कही है। अब कहते हैं कि ऐसा आत्मज्ञान कैसे उत्पन्न हो सकता है, कैसे प्राप्त किया जाता है, ऐसा प्रश्न यहाँ हो सकता है, अपेक्षित है। इसका उत्तर देते हैं कि विचार बिना आत्मज्ञान नहीं होता। विचार माने क्या? कि आत्मज्ञान प्राप्त करने का, आत्मकल्याण प्राप्त करने का विचार हुए बिना उसकी प्राप्ति नहीं होती। कोई भी काम पहले वैचारिक स्टेज में आता है, फिर डिसीशन के स्टेज में आता है, फिर एग्जीक्यूशन या एग्जीक्यूटिव स्टेज में आता है। कोई भी काम हो, पहले इसका विचार चलता है, फिर इसका कोई ना कोई डिसीशन लिया जाता है, फिर इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, यानी इसका अमलीकरण किया जाता है। तो कहते हैं कि जिसको आत्मज्ञान प्राप्त करना हो, उसको आत्मकल्याण, आत्मज्ञान की प्राप्ति का सबसे पहले विचार करना होता है। वो विचार करता है तो उसको प्राप्त होता है। और ऐसे विचारों के लिए, फर्स्ट स्टेज में ऐसे विचारों के लिए असत्संग और असत प्रसंग से जीव का ऐसा विचार बल प्रवर्तित नहीं होता, उसमें किंचित मात्र संशय नहीं है। अब क्या बात किया कि सुखी होना तो सब चाहते हैं, विश्व में कोई मनुष्य क्या, कोई ऐसा प्राणी नहीं, चाहे चींटी भी एक हो, जो सुखी होना नहीं चाहता है। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है। समस्त जीवों की प्रवृत्ति एक सुख प्राप्त करने के लिए ही होती है, लेकिन इसका विज्ञान से अनजाने होने से सब अपने अपने तरीके से सुख प्राप्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी सुख को किसी ने मटेरियलाइज किया नहीं। सुबह के स्वाध्याय में एक विषय चला था, हमने एक बहुत बुद्धिमान आदमी को प्रश्न पूछा था, ये जमाना मटेरियलिज्म का है और आप भी एक बुद्धिमान आदमी हैं, विश्व के सारे धर्मों का, संप्रदायों का, ग्रंथों का अध्ययन आपने किया है, तो मेरा एक प्रश्न है कि हैव यू मटेरियलाइज हैप्पीनेस? व्हाट इज हैप्पीनेस? हैव यू मटेरियलाइज इट? क्यों? क्या अमेरिका वाला भी डॉलर के पीछे हैं, भारत वाले रुपयों के पीछे हैं, यूरोप वाले पाउंड स्टर्लिंग के पीछे हैं, जिसका जो करेंसी है आखिर में, सब एक ही दिशा में दौड़ लगाते हैं, लेकिन मटेरियलाइज तो हुआ नहीं, सब कुछ मिलने पर भी मटेरियलाइज तो हुआ नहीं। हाँ, क्या कारण है? हमारा प्रश्न वो था कि आप बुद्धिमान हैं, साइंस को, विज्ञान को स्वीकारते हैं, विज्ञान की उपलब्धियों का अनुभव करते हैं, तो फिर सुख दुख के विषय में कौन सा विज्ञान है वो आपने क्यों नहीं सोचा? बोले कि हमने सोचा नहीं वो बात को, बहुत विचार तो बहुत किया है, लेकिन इस बात पर हमारा विचार उतना नहीं चला है। और कमनसीबी वो थी कि उन्होंने जैन ग्रंथ ही नहीं पढ़े थे, दुनिया भर के पढ़े थे लेकिन जैन ग्रंथ नहीं पढ़े थे। हमने बोला कि इस विषय का विज्ञान दुनिया के किसी ग्रंथ में नहीं है, एक जैन ग्रंथ में ही है। फिर उन्होंने मांगा, हमने दिए भी, तो इसका विज्ञान है इसमें, इसकी साइंटिफिक प्रोसेस है इसका, और इसकी उपलब्धियां भी है इसमें। इस विषय में वो कहते हैं कि जिसको आत्मज्ञान होना है, जरूरी लगता है उसको आत्मज्ञान का विचार इस विषय में, इस प्रकरण में, इस सब्जेक्ट में करना चाहिए, और वो विचार बलवान कब होता है, क्योंकि कोई भी विचार बलवान होता है तभी उसका एग्जीक्यूशन चालू होता है। जैसे एक मामूली प्यास लगती है तो हम पानी पीने के लिए प्रवृत्ति नहीं करते, लेकिन प्यास बढ़ने से वो बल पकड़ता है विचार, और हम पानी कहीं से भी पीने का प्रवृत्ति कर लेते हैं। तो आत्मकल्याण का, सुखी होने का विचार तो धर्म के क्षेत्र में आने वाले बहुत से लोग करते हैं, लेकिन इसका विचार बल नहीं होता। विचार होना एक बात है, विचार बलवान होना एक दूसरी बात है। वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे यहाँ भी लोग पूछेंगे कि भाई ये जैन शास्त्र पढ़ने वाले तो बहुत हैं हमारे यहाँ, किसको कितना फायदा हुआ, किसको कितना लाभ हुआ, किसको कितनी सुख शांति हुई, ये भी एक सवाल होता है। और बहुत कम परसेंटेज में ये बात में सक्सेस होने वाले मनुष्य देखे जाते हैं। इसका क्या कारण? शास्त्र तो बहुत से लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, स्वाध्याय करते हैं, मंदिर जी में जा करके पढ़ते हैं, स्वाध्याय के केंद्र होते हैं वहाँ भी करते हैं, ध्यान के केंद्र में जाते हैं, योगा के केंद्र में जाते हैं। क्या बात है कि विचार होना एक बात है, विचार बल होना दूसरी बात है। बलवान विचार नहीं होने से ये कमी रह जाती है। और इसका क्या कारण है विचार बलवान नहीं होते हैं? कि असत्संग, सत्संग और असत्संग। सत्संग मैंने जहाँ आत्मकल्याण और आत्म शांति की विचारधाराएं हैं, ऐसे मनुष्यों का संग होना, उसको कहते हैं सत्संग। और जहाँ ऐसी विचारधारा नहीं है, वो सब्जेक्ट वहाँ नहीं है आत्म शांति का, उसको कहते हैं असत्संग। अब देखिए, हमारे घर में, हमारे ऑफिस में, हमारे बाजार में, हमारे समाज में वो आत्म शांति की बातें तो नहीं चलती। तो ज्ञानी कहते हैं कि मनुष्य असत्संग से घिरा हुआ है। क्या परिस्थिति है हमारी? कि असत्संग से तो हम घिरे हुए हैं, और सत्संग क्वचित थोड़े समय के लिए मिलता है, लंबा समय के लिए मिलता ही नहीं है। जैसे कि हम इकट्ठे होते हैं तो घंटा भर बैठेंगे, तो हमारा सवा सात से आठ का, पौने घंटे का, या सात से आठ का, या आठ से नौ का, कोई भी एक घंटा का पीरियड रहता है, बाद में वो असत्संग में चले जाते हैं। परिस्थिति हमारी क्या है कि जैसा हम संग करते हैं वैसे असर हमारे विचारों पर आ जाती है। जैसा जैसा हमको संग मिलता है वैसे वैसे इफेक्ट क्या कहें, एफेक्ट हमको हो ही जाती है। होती है कि नहीं होती है देख लीजिए। जिसको जैसी संगति होती है वैसे उनकी विचारधारा और वैसे उनकी हालात हो जाती है। इसलिए ज्ञानियों ने सत्संग में रहने का उपदेश दिया है, और असत्संग से आत्मकल्याण के विचार नहीं होते, विचार होते तो विचार बल नहीं होता और उसमें कोई संशय यानी निशंक बात है कि ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। जो जैसे संग में रहता है उनके ऐसे ही विचार चलते हैं, वो बात निशंक है और अपने अनुभव से सब इस बात को समझ सकते हैं। अब कहते हैं कि ऐ सत्संग कम करने के लिए और सत्संग बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? आरंभ परिग्रह का अल्पत्व करने से, कम करने, अल्पत्व मैंने कम करने से असत प्रसंग का बल कम होता है। आरंभ परिग्रह जितना ज्यादा है उतना हमारे पास सत्संग के लिए समय कम है, इसलिए हमें कुछ निवृत्ति लेकर के हम अपने आप को सुखी होने के उपाय में कुछ समय अलग निकालना चाहिए। क्या करना चाहिए? अलग निकालना चाहिए। अगर हमारी कुछ जरूरत है, हमारे व्यवहारिक जीवन के हिसाब से हमारी कुछ जरूरतें होती है, उस जरूरतों को भी लिमिटेड करके, सीमित करके, अपना इतना हाई स्टैंडर्ड नहीं रखना चाहिए कि हमारा सारा जीवन इसके पीछे ही लग जाए, उसको फुलफिल करने के पीछे ही लग जाए। मीडियम क्वालिटी का जीवन बना करके उसके लिए जितनी जरूरत है उतना ही प्राप्त करना, अगर प्राप्त हुआ तो फिर उसको भी छोड़ देना। और चले इसमें छोड़ देना चाहिए कि नहीं छोड़ देना चाहिए? उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दिया, अपना बिजनेस का बहुत कम कर दिया, ठीक है, अपना जीवन चलता है, खाने में पीने में रहन सहन में चल सकता है, परिवार के लिए चल सकता है, फिर हमको हमारे आत्म कल्याण के लिए, हमारी सुख शांति के लिए कुछ अलग समय निकालना जरूरी है, आवश्यक है। इसलिए कि ये बहुत दीर्घ दृष्टि का विषय है, इसलिए कि हमारा जो आयुष्य है वो आयु 150 साल का है, वो भी बहुत सीमित है और बहुत अनिश्चित है, निश्चित नहीं है कि इतने साल तो हम जिएंगे ही जिएंगे। कोई तो माँ के पेट में मरता है, कोई तो पैदा होते ही मरता है, कोई कुछ घंटे में मरता है, कुछ कुछ दिनों में, कुछ कोई महीनों में, कोई कुछ सालों में, कोई बचपन में, कोई जवानी में, कोई बुढ़ापन में, कभी भी मर सकता है। जितना आयुष पूर्व भव में लेके आया है उसका साइंस है हमारे यहाँ, उतना ही वो जीता है। और इसका इंडिकेशन हमारी हथेली में है, इसका कैलकुलेशन है, और वो भी हमारे जैन शास्त्र का एक सब्जेक्ट है, ज्योतिष है, वो पामिस्ट्री है, उसे बता देते हैं कि इतनी आयु आप जिएंगे। तो उतना ही जीना होता है, चाहे बीमारी हो चाहे नहीं हो, चाहे एक्सीडेंट हो चाहे नहीं हो। तंदुरुस्त से तंदुरुस्त आदमी खाते खाते उबासी लेते लेते चला जाता है जवाने में, ऐसे देखा गया है। तो इसका मतलब हो गया कि हम तो जानते नहीं हमारा आयुष कितना है, जितना भोग इससे भी कम परसेंटेज है। अगर हमारा 40 साल हो गया तो मेजर पोर्शन ऑफ दी लाइफ अपना चला गया, जैसे कैसे भी चला गया। अब हमारे पास जो भी 20 साल 30 साल 40 साल जो भी है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल, इसको हमें कैसे यूटिलाइज करना, वो हमारी बुद्धिमानी पर आधारित है। इस भाव में अगर हम सुख शांति को प्राप्त नहीं कर सके आत्मज्ञान के दौरान, तो भविष्य में इसका नतीजा वो है कि बहुभाग मनुष्य पशु गति में चला जाता है। कोई कीड़े होते हैं, कोई गाय भैंस होते हैं, कोई जंगल के प्राणी होते हैं, कोई पक्षी होते हैं, कोई जलचर होते हैं, उसकी संख्या बहुत बड़ी है, क्योंकि बहुत से जीव इसमें चले जाते हैं। वहाँ तो कोई सुख शांति का न इलाज है, न विचार शक्ति है, न बुद्धिमानी है, न कोई वहाँ कोई परिस्थिति है। उन जीवों की ऐसी हालात क्यों हुई कि जब उनको बुद्धि मिली, कुदरत ने कुछ चांस दिया कि तुम कुछ सोच सकते हो अपनी भलाई के लिए, उस वक्त उन्होंने निग्लेक्ट किया इस बात को, उपेक्षा किया, सोचा नहीं, और बहुत से प्रकार के संसार के बुरे परिणाम में बुरे कर्म बांधे, और इस कर्म के फल में वो पशु गति में, तिर्यंच गति शास्त्र में बोली जाती है, उसमें जलचर, आकाश में उड़ने वाले खेचर और जमीन पर चलने वाले भूचर, तीन प्रकार के प्राणी होते हैं, जलचर, खेचर और भूचर। इसके भी बहुत पूरा विज्ञान है हमारे यहाँ, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ, इसका कारण क्या है, बहुत, इसलिए तो बड़े बड़े वॉल्यूम हमारे यहाँ हैं शास्त्रों के, इसका कारण कि सब प्रकार का साइंस और इसकी गिनती और इसका कैलकुलेशन हमारे ग्रंथों में है। हमारी ये हालात नहीं हुए, इसलिए हमें कुछ समय निकाल करके, वो कहते हैं कि आरंभ परिग्रह का अल्पत्व करके, उसको कुछ कम करके, हमें असत प्रसंग, मैंने जो संसार के प्रसंग है उसको कम करके, सत्संग में रहने के लिए, सत्संग का आश्रय लेने के लिए, और असत्संग का बल कम करने के लिए हमको वो इस दिशा में थोड़ा बाहर में प्रयास करना पड़ता है। वरना हमारे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, ये बात रहेगी। जब कोई बहुत व्यस्त आदमी ऐसा कहता है कि हमारे पास समय नहीं है, तो हम बता सकते हैं कि आपके पास समय है, जहाँ भी आपने सुख समझा है वहाँ आपका समय इसके पीछे जाता है। आपके पास समय तो है, लेकिन कहाँ है कि जहाँ आपने सुख समझा है उसके पीछे आपका समय है। अगर इस बात को आप समझेंगे तो इसके पीछे आपका समय आप व्यतीत कर पाएंगे जैसे कैसे भी। बात वो रही प्रायोरिटी की, किसको प्रायोरिटी दी जाए। 150 साल में अनुकूलता के संयोग जुटाने के पीछे हम लगे रहें, या आगामी दूसरे भावों में भी हम कहीं भी वर्तमान में भी दुखी नहीं हो, और भविष्य के भावों में दूसरे जन्म में भी हम दुखी नहीं हो, ऐसी कोई व्यवस्था बैठ सकती है तो इसको हमें प्रायोरिटी दी जाए। हमें क्या करना चाहिए, इसका विचार, इसका विवेक, इस विषय में हमें अवश्य हमारी विचार शक्ति, बुद्धि शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका इलाज दिखाते हैं श्रीमद् जी के, आरंभ परिग्रह का अल्पत्व करने से असत प्रसंग का बल कम होता है, और सत्संग के आश्रय से असत्संग का जो असर आया है हमारे पे उसका बल कम होता है, यानी उसकी असर कम होती है, और असत्संग के बल कम होने से आत्मकल्याण का विचार, आत्म शांति का विचार होने का अवकाश प्राप्त होता है। अवकाश मैंने खाली जगह, बात क्या है कि हम संसार के संयोग से सुखी होने के विचार में उतने इस विचार से भरे हुए हैं कि आत्म शांति और आत्म कल्याण के विचार करने के लिए हमारे पास अवकाश, खाली जगह नहीं है। उस खाली जगह प्राप्त करने के लिए हमको ऐसे सत्संग का जो असर आया है वो असर हमको कम करना पड़ेगा और ऐसे प्रसंगों को हमको कम करना पड़ेगा, तभी तो हमको आत्म कल्याण के विचार, आत्म विचार मैंने आत्म शांति के विचार होने का समय मिलेगा या कुछ हमारे विचारों में ये अवकाश होगा। हिंदी को हिंदी में अवकाश ही बोलते हैं ना, अवकाश को अवकाश ही बोलते हैं। आत्म विचार होने से, आत्म शांति के विचार होने से आत्मज्ञान प्राप्त होता है। आत्मज्ञान मैंने आत्म शांति, आत्मिक सुख, आत्मा का आनंद। और आत्मज्ञान होने से फिर इसका नतीजा क्या है वो आखिरी नतीजा बताते हैं कि आत्मज्ञान तो गृहस्थ अवस्था में भी हो सकता है, कुटुंब, परिवार, बिजनेस, नौकरी या कुछ भी प्रवृत्ति करते हुए भी आत्मज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं अगर सत्संग करते हैं तो। सत्संग के दौरान आत्मविचार होता है और फिर उसमें आगे बढ़ते होकर के आत्मज्ञान होता है और आत्मज्ञान से निज स्वभाव स्वरूप, जैसा हमारा मूल स्वरूप है, सर्व क्लेश और सर्व दुख से रहित ऐसा मोक्ष होता है, यह बात केवल सत्य है। बात कहाँ ले गए वो, मोक्ष तक ले गए। देखो अगर हम आत्मज्ञान नहीं करते हैं तो 84 लाख योनि में परिभ्रमण, जन्म मरण करते करते आखिर में निगोद में जाना होता है। अगर आत्मज्ञान करते हैं तो हम सुख शांति हमारी बढ़ाते 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 पूर्ण सुख शांति और पूर्ण परमानंद और मोक्ष में चले जाते हैं कि जहाँ कहीं भी दुख का अनंतवा अंश भी नहीं है, लाखवा करोड़वा नहीं, अनंतवा अंश भी नहीं है, जिसको हम नमो अरिहंताणम और नमो सिद्धाणम कहते हैं। अनादि जो नमस्कार मंत्र है उसमें जो पहले दो मंत्र है नमो अरिहंताणम और नमो सिद्धाणम, ये मोक्ष पद का है। ये मोक्ष पद की प्राप्ति का मूल कारण आत्मज्ञान है, ये बेसिक बात है। इस नींव पे, इस बेस पे पूरा स्ट्रक्चर होता 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 फिर मोक्ष तक पहुंचा जाता है। उसका 14 गुण स्थान है, उसका पूरा साइंस है और उसका पूरा कैलकुलेशन है। तो संक्षेप में वो बात बता दिया कि जिसको एक दफे भी जीवन में आत्मज्ञान मैंने आत्मानंद का अनुभव हो जाता है, यानी उसको स्वाद चखता है आत्म शांति का, निराकुल शांति का, उसको पूर्ण शांति, परमानंद, मोक्ष पद की प्राप्ति हुए बिना रहती नहीं। ये बात गारंटेड है। हमारे शास्त्रों में भी सभी ज्ञानियों ने, सभी तीर्थंकरों ने, सभी आचार्यों ने वो गारंटी दी है कि आप भले ही वर्तमान में गृहस्थ हो, ये कोई जरूरी नहीं कि आप घर छोड़ के निकल जाओ, मुनि हो जाओ। ये कोई जरूरी नहीं कि आप बिजनेस छोड़ के जंगल में चले जाओ। अब जो भी हालात में हो, आप सत्संग के दौरान आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो। और आत्मज्ञान हो गया तो आपका सिद्ध पद का रजिस्ट्रेशन यहाँ हो गया। रजिस्ट्रेशन मैंने एडवांस बुकिंग आरक्षण, रिजर्वेशन, एडवांस रिजर्वेशन हो गया। ये बात इतनी मूल्यवान है कि आप अपने वर्तमान परिस्थिति में सिद्ध पद का रिजर्वेशन करा सकते हैं। फिर सिद्ध पद के लिए भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपका रिजर्वेशन हो चुका है और ये स्कोप आपको इधर है। सबसे ज्यादा मनुष्य में ये स्कोप ज्यादा है क्योंकि पशु गति में विचार शक्ति खत्म हो जाती है, वहां लंबा विचार शक्ति नहीं है। नारकी में इतना रोग और इतना दुख है कि उस पीड़ा से विचार शक्ति कोई काम नहीं करती है, पीड़ा के पीछे ही पूरे के पूरा जो ज्ञान है और उपयोग है वो लग जाता है। देवलोक में भी विचार शक्ति उतनी नहीं काम करती है, वहाँ उतनी अनुकूलताएं हैं, यहाँ तो अपने को बिजनेस करना पड़ता है, कारखाना लगाना पड़ता है, कुछ भी करना पड़ता है, वहाँ तो कुछ प्रवृत्ति किए बिना उतनी संपत्ति होती है, उतनी देवियाँ वो सब उतना है, शरीर भी सुगंधित, शरीर में से बदबू नहीं आएगी, इतने शरीर सुगंधित, इतने स्वरूपवान, खुद इतना स्वरूपवान होते हैं, देवियाँ इतनी स्वरूपवान होती है, उतनी संपत्ति होती है कि जिसके जूतों में रत्न लगाए जाते हैं, मोजड़ी में, जो यहाँ देखने को नहीं मिले वो तो उसके जूते में होते हैं, उतनी संपत्ति में वो उतने रस लेते हैं, उतने इंटरेस्टेड होते हैं कि उनको आत्मकल्याण का विचार ही नहीं आता। जैसे यहाँ बहुत श्रीमंत लोगों को ये विचार नहीं आएगा, जबकि यहाँ तो उपाधि भी बहुत है, वहाँ उतनी प्रवृत्ति की उपाधि नहीं होने के बावजूद भी भोगोपभोग की जो वृत्ति होती है उसमें उतना रस होता है कि आत्मकल्याण का विचार करोड़ों अरबों साल का आयुष होने पर भी विचार नहीं आता है। यहाँ तो आयुष बहुत सीमित है, वहां तो देवलोक में आयुष बहुत बड़ा है, मिनिमम आयु 10,000 साल का है, कितना जो हमारे ग्रंथ में बताया गया है, मिनिमम जो ये भूत प्रेत ये जो हल्के जाति के देव होते हैं ना उनके आयु 10,000 साल का होता है कम से कम, फिर ऊपर ऊपर के देवलोक में तो बहुत से करोड़ों अरबों अरबों के साल का आयुष होता है, सागरोपम का आयुष होता है, इसको सागर बोलता है आयुष का, फिर भी आत्मकल्याण का विचार नहीं आता। हम बहुत बार गए वहां पुण्य संचय करके, बहुत बार हम गए, पाप का संचय करके बहुत बार नरक में गए, पुण्य का संचय करके बहुत बार स्वर्ग में गए, और ज्ञान की, ज्ञानियों की, देवगुरु शास्त्र की, धर्म की विराधना करके बहुत बार हम पशुगति में गए, क्योंकि वहाँ ज्ञान संकुचित हो जाता है, मनुष्य बहुत कम बार हुए हैं। मनुष्य होने का हिसाब किताब ऐसा है कि जो जीव बहुत सरल परिणामी होता है वही मनुष्य होता है, जिसको ज़्यादा पुण्य भी नहीं, ज़्यादा पाप भी नहीं, जैसे बैलेंस शीट में नो लॉस नो प्रॉफिट होता है, ऐसा कभी बनता है, रेयर केस में बनता है, वैसे मनुष्य रेयर केस में हुआ जा सकता है। अगर कोई मनुष्य होता है तो बहुत बड़भागी बात है, वो आत्मकल्याण का विचार करने के लिए सक्षम है, एबल है, और उसमें भी ये तीर्थंकरों की बात मिलना, ज्ञानियों के विचार मिलना, मुक्त होने का साइंस विज्ञान मिलना, उस विचारधारा में आना, ये तो एक बहुत बड़ा पुण्य का योग होता है। अगर कोई बड़भागी होता है तो एडॉप्ट करता है और उस मार्ग पर चला करके अपने आप को हमेश के लिए सुखी कर लेता है, हमेश के लिए, आने वाले अनंत काल के लिए वो सुखी हो जाता है, वो नमो रियंतणम नमो सिद्धाणम पद में चला जाता है, उस गति में चला जाता है, वो पंचम गति है, चारों गति में से मोक्ष गति में चला जाता है। वो मोक्ष गति में जाने का एक कारण मात्र आत्मज्ञान है, दूसरा कुछ नहीं है, और वो आत्मज्ञान के लिए सत्संग के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है। क्यों? कि ग्रंथ पढ़ने से पूरी समझ नहीं आती, क्यों कि ग्रंथ में सब थ्योरी है, थियोरेटिकल नॉलेज बहुत है, जबकि प्रैक्टिकल नॉलेज सत्संग से प्राप्त होता है, सिर्फ ग्रंथों से नहीं होता। हमारे यहाँ भी बहुत सी टेक्निकल लाइन ऐसी होती है कि जहाँ प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं चलती है, जैसे कोई डॉक्टर होता है तो उसको इंटर्नशिप करनी पड़ती है 2 साल के लिए, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर उनको जो डिग्री मिली है उसका वो प्रयोग कर सकता है समाज के बीच में। इसके पहले वो डिग्री का प्रयोग नहीं कर सकता है, उसको मंजूरी नहीं मिलती है, क्योंकि वहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज जरूरी है। वैसे आत्मज्ञान है वो अकेला कोई थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है, उसमें कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और वो हम हमारे गृहस्थ जीवन में रह करके कर सकते हैं। और इसकी ये योजना है, क्या है, आत्मज्ञान प्राप्त करने की एक योजना है, व्यवस्थित योजना है, इस योजना के मुताबिक हमें आगे बढ़ना होता है। हमारे सत्संग के माध्यम से इस विषय में मुमुक्षुता आरोहण क्रम में इसकी पूरी योजना का एक छोटी सी किताब हम लोगों ने पब्लिश किया है, वो इस विषय में बहुत अनुभव सिद्ध बातें उस विषय में व्यवस्थित रूप से दी गई है कि आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होता है, जो मोक्ष का कारण होता है, और किस हालात में हो सकता है, किस तरह से वो लग सकता है, उसका प्रारंभ कैसे होता है, उसमें आगे बढ़ना कैसे होता है, ये सब बात उसमें है। तो यहाँ श्रीमद जी ने इस पत्र के प्रारंभ में ये बात किया है कि सर्व क्लेश से और सर्व दुख से मुक्त होना है तो आत्मकल्याण की विचारधारा में सत्संग के दौरान आ जाओ, असत्संग को कम करके आत्मज्ञान की प्राप्ति करो, आप मोक्ष तक पहुंच जाओगे, ये बात फाइनल कर दी है उन्होंने। अब ये आत्मज्ञान करने में सबसे बड़ा अवरोध, ऑब्स्टेकल जिसको बोलते हैं, वो क्या चीज है, इसकी चर्चा करते हैं कि जो जीव मोह निंद्रा में सोए हुए हैं, क्या है, जो मोह है वही आत्मज्ञान का दुश्मन है। कौन है? मोह। मोह क्या चीज है? मोह है वो जीव का एक विपरीत परिणाम है, जिस परिणाम के कारण से जीव को अशांति क्लेश दुख बहुत बहुत होता है, मोह के कारण से। ये मोह क्या चीज होती है, तो उसको समझने के लिए हमको इससे जितने भी मोह के फैक्टर्स हैं उसका अपने अनुभव से मिलान करना होगा। मोह क्या चीज होती है कि मोह कुछ पदार्थ में अच्छापन देखता है, कुछ पदार्थ में बुरापन देखता है। हमको कोई कलर अच्छा लगता है, कोई कलर बुरा लगता है। जैसे कि हमारे बाल के कलर हमको काला पसंद है, जबकि हमारे चमड़ी के कलर हमको काला बिल्कुल पसंद नहीं है, सफ़ेद पसंद है, जबकि बाल में हमको बिल्कुल सफ़ेद पसंद, बिल्कुल सफ़ेद। इसलिए काला रंग अच्छा या सफेद रंग अच्छा वो बात नहीं रहती है, जैसा हमारा मोह है वही अच्छा है ना, कोई कलर अच्छा बुरा है ही नहीं। इस दृष्टांत से जगत में कोई चीज अच्छी बुरी नहीं है, मोह से कोई चीज हमको अच्छी लगती है, कोई चीज हमको बुरी लगती है। एक आदमी को मिठाई अच्छी लगती है, दूसरे को मिठाई का एलर्जिक हो जाता है। एक को भिंडी के साथ बहुत पसंद है, दूसरे को भिंडी के साथ देखी नहीं जाती, कोई चीज अच्छी बुरी नहीं, मोह के कारण से। एक तो मोह का स्वरूप वो है, दूसरा मोह का स्वरूप वो है कि हम जिस परिवार में पैदा होते हैं उस परिवार के सदस्यों के साथ अपनापन करना, और पड़ोसी से लेकर दुनिया के सभी मनुष्यों के साथ परायापन करना, ये मोह का दूसरा सिम्टम है। और इसके कारण से हम पाप करने में कोई कमी नहीं रखते। आज इस दुनिया में जितने भी स्लॉटर हाउस हैं, कत्ल खाने हैं, जो एक सेकंड में हजारों प्राणियों का कत्ल करता है, वो भी अपने परिवार के लिए करता है। किसके लिए करता है? रोटी वो भी चार छह ही खाता है, वो कोई सोने के बिस्किट नहीं खाते, वो भी आटा का ही बिस्किट खाता है, वो भी आटा के रोटी खाता है। लेकिन वो कहाँ जाएगा मर कर के, वो तो भगवान जानते हैं, ज्ञानी जानते हैं, लेकिन वो भी अपने परिवार के लिए करते हैं। परिवार के लिए क्यों करते हैं? कि उसमें अपनापन है इसलिए करते हैं, और हम भी अपनापन है इसलिए करते हैं। तो अपनापन हो गया कॉमन, चाहे स्लॉटर हाउस वाला हो, चाहे नौकरी करने वाला हो, चाहे बिजनेस करने वाला हो, चाहे कोई सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, कुटुंब में अपनापन करता है, वो मोह के कारण से करता है। आप बोलेंगे इसको मोह क्यों कहें? मोह इसलिए कहते हैं कि जिस सदस्य से वो अपनापन करता है, वो पैदा होने के पहले उसको मालूम नहीं था कि कहाँ था और कैसे हमारे यहाँ आ गया, और उसका आयु पूर्ण होने के बाद वो कहाँ गया, उसका कोई एड्रेस मिलता नहीं, बिल्कुल लापता हो जाता है। हमारे बुजुर्ग सब चले गए, देखा कोई एड्रेस हमारे पास नहीं है आज। तो इन बिटवीन आयु के काल में जो हमारा मिलना जुलना एक छत के नीचे हुआ, एक छप्पर के नीचे हुआ, हम पकड़ करके बैठ गए कि ये हमारे हैं, इस पर हमारा अधिकार है। अधिकार बुद्धि भी आएगी, आधार बुद्धि भी आएगी, सुख बुद्धि भी आएगी। ये आधार बुद्धि इसके बिना नहीं चलेगा, ये सुख बुद्धि ये हमारे सुख के कारण है, और ये अधिकार बुद्धि ये सब मोह के ही पर्याय है, मोह के ही सिम्टम है। ऐसे मोह के बहुत से सिम्टम हैं जो सत्संग के दौरान समझे जाते हैं, और वही हमारे आत्मज्ञान के दुश्मन हैं, वही हमको आत्मज्ञान कराने में आड़े आते हैं, वही हमको परिभ्रमण जन्म मरण कराते हैं, वही हमको दुखी कराते हैं, वही सबको हमको पाप कराते हैं, सब कुछ कराते हैं। इसलिए उसको भी समझना जरूरी है जिससे हमें नुकसान होता है, और उसको ही समझना जरूरी है जिससे हमें लाभ होता है, या हमें शांति होती है। लाभ माने शांति, किससे अशांति होती है? दुख और अशांति का साइंस क्या है, सुख और शांति का साइंस क्या है, वो बात समझनी हमारे लिए जरूरी है, और उसमें हमारे बुद्धिमानी का सदुपयोग करना चाहिए। उतनी सी बात है, और पत्र का जो शेष अंश है वो हम कल के स्वाध्याय में लेंगे। आज समय समाप्त होता है आज। Yeah, I don't know.